संयुक्त राष्ट्र रेडियो से पेश है साप्ताहिक समाचार परिक्रमा। अभिवादन के साथ मैं हूं महबूब खान। 14 जून 2024 के बुलेटिन की सुर्खियां। गाजा पट्टी में तबाही का स्तर कल्पना से भी परे का, जरूरतमंद लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाना लगभग असंभव। 2023 में टकराव और युद्धों वाले स्थानों पर बच्चों को करना पड़ा है असहनीय स्तर की हिंसा का सामना। अफगानिस्तान के माध्यमिक स्कूलों में लड़कियों की शिक्षा पर पाबंदी थोपे जाने के 1000 दिन पूरे हो जाने पर गहरा क्षोभ। और 40 करोड़ बच्चों को अपने घरों पर ही सामना करना पड़ता है मनोवैज्ञानिक आक्रामकता या शारीरिक दंड का। हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि ताज़ा समाचारों और मल्टीमीडिया सामग्री के लिए हमारी वेबसाइट पर अवश्य आएं। पता है news.un.org/hi। और हाँ, मोबाइल डिवाइसेस पर भी आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है UN News। आइए अब सुनते हैं समाचार विस्तार से। गाजा के दक्षिणी और मध्यवर्ती इलाकों में बढ़ती युद्धक गतिविधियों के कारण जरूरतमंद लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाना लगभग असंभव साबित हो रहा है। गाजा में विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP के उप कार्यकारी निदेशक कार्ल स्काउ ने गाजा पट्टी की 2 दिन की यात्रा करने के बाद शुक्रवार को कहा कि गाजा पट्टी में तबाही का स्तर कल्पना से भी परे का है। गाजा के उत्तरी इलाके में एक भी ऐसी इमारत नहीं देखी गई जो गोलीबारी से क्षतिग्रस्त ना हुई हो।
Now our concerns are really in the south, where the progress that we had made is being reversed. But beyond that, of course, people need more than food to survive. And the people.
कार्ल स्काउ कह रहे थे कि उनकी चिंता है कि दक्षिणी इलाके में सहायता सामग्री के वितरण में जो प्रगति हुई थी वो अब पलट रही है। उससे भी परे लोगों को जीवित रहने के लिए भोजन से कहीं अधिक चीजों की जरूरत है। उन्हें बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल की जरूरत है और स्पष्ट रूप में कहें तो उन्हें मानव गरिमा का कुछ स्तर चाहिए। जिससे भी मेरी बातचीत हुई उन्होंने युद्ध विराम लागू किए जाने की बात की। वो इस युद्ध का खात्मा चाहते हैं। गाजा में WFP के उप कार्यकारी निदेशक कार्ल स्काउ के शब्द। इस बीच संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी WHO ने बताया है कि गाजा के दक्षिणी इलाके अल मवासी में इसराइल द्वारा घोषित तथा कथित सुरक्षित क्षेत्र में भारी बमबारी होने की खबरें हैं, जबकि युद्ध विराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जारी हैं। WHO ने इस बीच कुपोषण से 32 बच्चों की मौतें होने की खबर दी है, जिनमें 28 बच्चे 5 वर्ष से कम उम्र के थे। WHO के मुखिया डॉक्टर टेड्रोस एडेनोम गेब्रियसिस ने कहा है कि 8 महीने के भीषण युद्ध में गाजा की आबादी का एक बड़ा हिस्सा इस समय भूख के अत्यंत गंभीर स्तर और अकाल जैसे हालात का सामना कर रहा है। उधर इसराइल द्वारा काबिज फिलिस्तीनी क्षेत्र पश्चिमी तट में ऊंचा ने आगाह किया है कि इसराइली सेनाओं और वहां बसे यहूदी बाशिंदों द्वारा की जा रही हिंसा में 7 अक्टूबर के बाद से 500 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें लगभग 1/4 बच्चे थे। संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2023 में टकराव और युद्धों वाले स्थानों पर बच्चों को असहनीय स्तर की हिंसा का सामना करना पड़ा है और इसमें वर्ष 2022 की तुलना में 21% की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2023 में 5,301 बच्चों की मौत हुई, जो कि हर दिन 15 बच्चों के बराबर है। एक संक्षिप्त रिपोर्ट सुनिए सचिन गौड़ से।
बच्चों और सशस्त्र टकराव पर केंद्रित इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के 26 स्थानों पर 22,500 से अधिक बच्चों के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन हुआ। लगभग 33,000 मामलों की पुष्टि हुई। 2023 में युद्धक गतिविधियों में इस्तेमाल के लिए 8,500 से अधिक बच्चों की भर्ती की गई और 4,000 से अधिक बच्चों का अपहरण किया गया। सशस्त्र टकरावों, युद्ध के बदलते तौर तरीकों, घनी आबादी में विस्फोटक हथियारों के इस्तेमाल की वजह से पिछले साल बच्चों के मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन मामलों में वृद्धि हुई है। रिपोर्ट बताती है कि बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून में जो संरक्षण उपाय तय किए गए हैं उनकी खुलेआम अनदेखी की गई। इनमें बच्चों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन भी शामिल है। 11,500 से अधिक बच्चे या तो मारे गए या अपंग हो गए। बच्चों के मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन के सबसे अधिक मामले इसराइल द्वारा काबिज फलस्तीनी क्षेत्र, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, म्यांमार, सोमालिया, नाइजीरिया और सूडान में दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट में हेती और निजेर के बारे में पहली बार जानकारी शामिल की गई है।
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक कैथरीन रसेल ने अफगानिस्तान के माध्यमिक स्कूलों में लड़कियों की शिक्षा पर पाबंदी थोपे जाने के 1000 दिन पूरे हो जाने पर गहरा क्षोभ व्यक्त किया है। उन्होंने ध्यान दिलाया है कि कोई भी देश अपनी आधी आबादी को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता है। एक संक्षिप्त रिपोर्ट सुनिए अंशु शर्मा से।
यूनिसेफ की शीर्ष अधिकारी ने गुरुवार को जारी अपने एक वक्तव्य में कहा कि अफगानिस्तान एक दुखद पड़ाव पर पहुंच गया है। लड़कियों के माध्यमिक स्कूलों में जाने पर पाबंदी लगाने की घोषणा को 1000 दिन पूरे हो गए हैं। स्कूल से बाहर 1000 दिन का अर्थ है सीखने सिखाने के 3 अरब घंटों का नुकसान। अफगानिस्तान में अगस्त 2021 में सत्ता पर तालिबान का वर्चस्व स्थापित होने के बाद से ही महिला अधिकारों के लिए संकट उपजा है। तालिबान प्रशासन ने अफगानिस्तान के विश्वविद्यालयों में महिला छात्रों की पढ़ाई पर रोक लगाई है और माध्यमिक स्कूलों से भी छात्राओं को बाहर कर दिया है। कैथरीन रसेल ने कहा कि स्कूलों में पढ़ाई पर पाबंदी का असर लड़कियों से परे तक जाता है, इससे मानवीय संकट और गहरा होता है जिसके देश की अर्थव्यवस्था और विकास के लिए गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में सभी बच्चों को समर्थन प्रदान करने के लिए यूनिसेफ निरंतर प्रयासरत है। साझेदार संगठनों के साथ मिलकर 27 लाख बच्चे प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जबकि 6 लाख बच्चों के लिए समुदाय आधारित कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। इनमें 2/3 लड़कियां हैं। साथ ही शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। यूनिसेफ प्रमुख ने अफगानिस्तान में तालिबान प्रशासन से इस दुखद पड़ाव पर आग्रह किया कि सभी बच्चों को तत्काल पढ़ने लिखने की अनुमति दी जानी होगी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी इन लड़कियों की मदद करने के लिए कोशिशें जारी रखनी होगी।
वर्ष 2024 और 2023 के दौरान विश्व भर में जबरन विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या अपने ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR की एक नई रिपोर्ट में विस्थापन मामलों पर वैश्विक रुझान का खाका प्रस्तुत किया गया है। कुछ और जानकारी के साथ सचिन गौड़।
रिपोर्ट बताती है कि मई 2024 में जबरन विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 12 करोड़ तक पहुंच गई। ये लगातार 12वां साल है जब इस आंकड़े में वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। विश्व के अनेक हिस्सों में पहले से जारी और हाल के समय में भड़कने वाले युद्ध और हिंसक टकराव इसकी एक बड़ी वजह बताए गए हैं। जबरन विस्थापितों की संख्या में रिकॉर्ड उछाल के लिए सूडान में परस्पर विरोधी सैन्य बलों के बीच युद्ध भी एक कारण है, जहां 2023 के अंत तक 1 करोड़ से अधिक लोग विस्थापित हो चुके थे। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में लाखों लोग देश की सीमाओं के भीतर विस्थापित हुए हैं। म्यांमार में भी यही हालात हैं, जहां सेना और अलगाववादी गुट के बीच भीषण लड़ाई में तेजी आई है। वहीं गाजा पट्टी की करीब 75% आबादी यानी 17 लाख लोग जबरन विस्थापन का शिकार हुए हैं। सबसे अधिक विस्थापितों के नजरिए से सीरिया में हालात सबसे खराब हैं, जहां देश की सीमाओं के भीतर और अन्य देशों में 1.25 करोड़ से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। UN शरणार्थी एजेंसी के उच्चायुक्त फिलिपो ग्रैंडी ने कहा कि इन चौंकाने वाले आंकड़ों और विस्थापितों की बढ़ती संख्या के पीछे मानव त्रासदी की अनगिनत दास्तां हैं, उनकी पीड़ा को समझना होगा और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तुरंत कदम उठाने होंगे।
विश्व भर में 5 वर्ष से कम उम्र के करीब 40 करोड़ बच्चों यानी इस आयु वर्ग में हर 10 में से 6 बच्चों को घर पर नियमित रूप से मनोवैज्ञानिक आक्रामकता या शारीरिक दंड का सामना करना पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के एक नए विश्लेषण के अनुसार लगभग 33 करोड़ बच्चों को अनुशासन सिखाने के लिए हिंसक तौर तरीकों से दंडित किया जाता है। मनोवैज्ञानिक आक्रामकता से यहाँ तात्पर्य बच्चों पर चिल्लाने, चीखने और उन्हें अपमानजनक शब्दों जैसे कि बुद्धू या आलसी जैसे नामों से पुकारना है। वहीं शारीरिक दंड से अर्थ उनके हाथों, बांह, पांव पर इस तरह से मारना है जिससे उन्हें दर्द या असहजता महसूस हो मगर वे घायल ना हों। कैथरीन रसेल ने बताया कि जब बच्चों के साथ शारीरिक या शाब्दिक दुर्व्यवहार किया जाता है या फिर उन्हें सामाजिक व भावनात्मक देखभाल से वंचित रखा जाता है तो ये उनके विकास व स्वयं के लिए नजरिए पर नकारात्मक असर डाल सकता है। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अब महबूब खान को अनुमति।